हेलो। हेडिंग, नाट्यशास्त्र के कुछ पारिभाषिक शब्द। हेडिंग, नांदी। नाटक के आरंभ में जिस पद्य के द्वारा देवता, राजा आदि का अभिनंदन किया जाए उसे नांदी कहते हैं, अर्थात नंद्यन्ते स्तुयन्ते देवतादयो यस्यामिति नांदी। साहित्य दर्पण में विश्वनाथ भट्टाचार्य ने नांदी की परिभाषा इस प्रकार की है। श्लोक, आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विज नृपादीनां तस्मान् नान्दीति संगीता, अर्थात ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए आशीर्वादात्मक वाक्यों से युक्त नाटक के आरंभ में की गई देवता, ब्राह्मण, नृप आदि की मांगलिक प्रार्थना को नांदी कहा जाता है। इस नांदी की अपेक्षित है इसके द्वारा शंख, चंद्र, पद्म, चक्रवाक, कैरव आदि मंगलास्पद वस्तुओं की अभिव्यंजना हो जाए। नांदी चतुपदा, अष्टपदा तथा द्वादशपदा भी होती है। जैसे श्लोक, मांगल्य शंख चंद्राब्ज कोक कैर वंशिनी पदरयुक्ता द्वादश भ्रष्टा भीरवा पदरुत। साहित्य दर्पण परिच्छेद छठा, श्लोक संख्या 25। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में कहा है। श्लोक, देवद्विज नृपादीनां आशीर्वाद परायणा नंदन्ति देवता यस्मात् तस्मान् नंदिति संगीता। काव्यद्वीप में लिखा है कि श्लोक, नंदन्ति काव्यानि कविन्द्रवर्गा कुशीलवा परिषदश्च संतः यस्मादलं सज्जन सिंधुहसिं तस्मादियं सा कथितेव नांदी। हेडिंग, सूत्रधार। नाटक का वह प्रधान नट जो नाटकीय कथा वस्तु के भिन्न भिन्न उपकरणों के सूत्र को संभाले रहता है उसे सूत्रधार कहते हैं, अर्थात सूत्रम धारितीति सूत्रधारः। जैसे श्लोक, नाट्योपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते सूत्रम धारितीत्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते, अर्थात नाट्य के विभिन्न उपकरणों को सूत्र कहते हैं और जो पात्र उन्हें संभालना है उसे सूत्रधार कहते हैं। सूत्रधार की अन्य सरल एवं संक्षिप्त परिभाषा यह है कि प्रधान नट विशेष को सूत्रधार कहते हैं जो सर्वप्रथम रंगमंच पर आकर वर्णनीय कथा वस्तु की सूचना देता है। श्लोक, वर्णनीयम कथा सूत्रम प्रथमम येन सूच्यते रंगभूमिम समासाद्य सूत्रधार स उच्यते। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान पिशेल साहब ने कठपुतली के नाच से नाटकों की उत्पत्ति मानी है। कठपुतली के नाच में व्यवस्थापक नचाने वाला सूत्र अर्थात डोरी को पकड़कर पुतलियों को नचाता है, इस आधार पर उसे सूत्रधार कहते हैं। शारदा तने के अनुसार वह कथा वस्तु, नायक, रस आदि का सूत्र अर्थात संक्षेप में वर्णन करता है, अतः उसे सूत्रधार कहते हैं। हेलो। श्लोक, सूत्रेण काव्य निक्षिप्त वस्तु निकृत सार सान नांदी श्लोके नाद्यन्ते सूत्रधार इति स्मृतः। इस प्रकार सूत्रधार रंगमंच का प्रधान अधिकारी और व्यवस्थापक ही नहीं होता अपितु वह रंगमंच को सजाने की कला में भी प्रवीण होता है। वह नाटक के नायक, कवि और कथावस्तु के गुणों का संक्षेप में वर्णन करता है। श्लोक, आसूत्रयन गुणान नेतुः कवेरपि च वस्तुनः रंग प्रसादन प्रौढ़ सूत्रधार इहोदितः। हेडिंग, प्रस्तावना। जिसमें नाटक की कथा वस्तु को प्रस्तुत किया जाए उसे प्रस्तावना या आमुख कहते हैं। जैसे श्लोक, नटी विदूषको वापि पारिपार्श्विक ए वा सूत्रधारण संहिता संलापम यत्र कुर्वते चित्रवाक्य स्वकार्य उत्थते प्रस्तुताक्षेप विर्मिथ आमुखम तत्तु विज्ञेयम नामना प्रस्तावना अपि सा। अर्थात नाटक का वह भाग जिसमें नाटक प्रारंभ होने के पहले नटी विदूषक या पारिपार्श्वक अपने प्रस्तुत कार्य के संबंध में सुंदर एवं रोचक शब्दों में सूत्रधार के साथ वार्तालाप करते हैं उसे आमुख या प्रस्तावना कहते हैं। इसमें विचित्र उक्तियों के द्वारा वार्तालाप होता है तथा बड़े कौशल से नाटक आरंभ होता है। श्लोक, सूत्रधारो नटीम ब्रूते मारिशम वा विदूषकम स्वकार्यं प्रस्तुताक्षेपी चित्रोक्त्या यत्दामुखम्। हेडिंग, प्रयोगातिशय। यदि किसी एक ही प्रयोग में अन्य प्रयोग आरंभ हो जाए और उसी के द्वारा पात्र का प्रवेश करा जाए तो उसे प्रयोगातिशय कहते हैं। जैसे श्लोक, यदि प्रयोग एकस्मिन् प्रयोगोन्यः प्रयुज्यते तेन पात्र प्रविश्चेत प्रयोगातिशस्तदा। प्रयोगातिशय प्रस्तावना का ही एक भेद है। हेडिंग विष्कंभक। विष्कंभक नाटक के किसी भी अंक के आदि में आने वाला वह भाग है जिसके माध्यम श्रेणी के दो पात्रों द्वारा पारस्परिक वार्तालाप में बीती हुई या आने वाली नाटकीय कथावस्तु से संबंध घटनाओं की सूचना दी जाती है। विष्कंभक दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध विष्कंभक, दूसरा संकीर्ण विष्कंभक। शुद्ध विष्कंभक उसे कहते हैं जिसमें एक या तो पात्र मध्यम श्रेणी के हों और संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते हों। संकीर्ण विष्कंभक वह होता है जिसमें एक पात्र मध्यम श्रेणी का हो तथा दूसरा निम्न श्रेणी का। इसमें प्राकृत तथा संस्कृत दोनों भाषाओं का प्रवेश होता है। श्लोक, वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां निदर्शकः संक्षिप्तार्थस्तु विष्कंभक आदावंगस्य दर्शितः मध्येन मध्यमाभ्यां वा पत्राभ्यां संप्रयोजितः शुद्धः स्यात्सतु संकीर्णो नीच मध्यम प्रकल्पितः। हेडिंग प्रवेशक। प्रवेशक भी विष्कंभक के समान अतीत या भावी कथांशों का सूचक है। इसमें प्रयुक्त शक्ति उदात्त नहीं होती, इसकी भाषा सदा प्राकृत होती है और इसमें नीच पात्रों का प्रयोग होता है। प्रवेशक की योजना हमेशा दो अंकों के बीच में ही होती है, यह भी शेष अर्थों का सूचक है। श्लोक, प्रवेशकोनुदात्तोक्तया नीच पात्र प्रयोजितः अंगद्वयान्तर्विज्ञेय शेषम विष्कंभके यथा। हेडिंग अंगावतार। कभी कभी पात्रों द्वारा एक अंक के अंत में अगले अंक के अभिनय का आभास मिलता है जिसे अंगावतार कहते हैं, अर्थात अंगावतारस्त्वंगान्ते पातो अंकस्या विभागतः। जिस अंक में अंकावतार होता है उसमें प्रवेशक तथा विष्कंभक नहीं होते। हेडिंग स्वगत। कभी कभी रंगमंच का पात्र अपने मन की गुप्त बातों को प्रकाश मिलाने के लिए दूसरी ओर मुंह फेरकर इस तरह बात करता है जिसको दर्शक तो सुन लेते हैं पर रंगमंच के अन्य पात्र नहीं सुन पाते। स्वगत का प्रयोग कथावस्तु के उस भाग के लिए होता है जो किसी भी पात्र को नहीं सुनाया जाता। इससे पात्र विशेष के मानसिक भावों की झलक मिलती है। इस प्रकार स्वगत मन ही मन बोलना चाहता है, अर्थात अश्राव्यम खलु यदस्तु तदिह स्वगतम मतम। हेडिंग प्रकाश। प्रकाश सर्वश्राव्य नाटकी कथा वस्तु का वह भाग है जिसका रंगमंच के सभी नाट पात्रों को सुनाना अभिष्ट है। प्रकाश का वास्तविक अर्थ है प्रकट रूप में सुनाने के लिए जो बात कही जाए। धनंजय ने दश रूपक में प्रकाश और स्वगत का लक्षण इस प्रकार किया है, अर्थात सर्वश्राव्यम प्रकाशम स्याद श्राव्यम स्वगतम मतम। हेडिंग जनांतिक। जनांतिक एक नाटकीय परिभाषिक शब्द है जो नियत व्यक्तियों को ही सुनाने के लिए प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग वहां होता है जहां पर कोई पात्र रंगमंच पर स्थित अन्य पात्रों से किसी बात को छुपाने के लिए एक ओर होकर किसी पात्र से शनह शनह बात करता है। इसकी परिभाषा दस रूपक में धनंजय ने इस प्रकार दी है। श्लोक, त्रिपता काकेरणान्यान पवारयान्तरा कथाम अन्योन्य मंत्रणम यत् स्याद् जनान्ते तज्जानन्तकम्। हेडिंग अपावरितम्। अन्य व्यक्तियों की ओर मुंह फेरकर किसी पात्र विशेष के प्रति जो किसी गुप्त रहस्य का प्रकाशन किया जाता है उसे अपावारित कहते हैं। इसकी परिभाषा विश्वनाथ भट्टाचार्य ने अपने साहित्य दर्पण में इस प्रकार दी है, तद भवेद पावरितम रहस्यम तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते। और नाट्य दर्पण में लिखा है कि जो बात पात्र विशेष से छिपाकर अन्य पात्रों से कही जाती है उसे अपवारित कहते हैं, अर्थात रहस्यम कथितन्यस्य परावृत्या पवारितम। हेडिंग पूर्वरंग। नाटकी कला की अवतारणा से पहले नटवृंद रंगभूमि के विघ्नों को दूर करने के निमित्त जो कुछ भी करते हैं उसे पूर्वरंग कहते हैं। विश्वनाथ भट्टाचार्य ने साहित्य दर्पण के छठे परिच्छेद में पूर्वरंग की परिभाषा इस प्रकार की है। श्लोक, ये नाट्य वस्तुनः पूर्व रंग विघ्नोपशान्तये कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति पूर्वरंगः स उच्यते। हेडिंग अंक। नाटक की पूरी घटनाओं के विकास को कई भागों में विभक्त कर देने पर प्रत्येक भाग को अंक कहते हैं। प्रत्येक अंक में नायक तथा नायिका आदि पात्रों के चरित्र का प्रदर्शन होता है और प्रत्येक अंक में एक ही रस की प्रधानता होती है। श्लोक, अंक इति ऋण शब्दो भावेश्च रसेश्च उर्यत्यर्थान नाना विधान युक्तो यस्मात् तस्मात् भवेदंकं। हेडिंग अर्थ, प्रकृतियां और संधियां। नाटक में प्रधान कथावस्तु नायक का कोई न कोई लक्ष्य होता है और उसे ही फल कहते हैं। उस फल की सिद्धि के उपाय ही अर्थ प्रकृतियां हैं। ये पांच हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। अर्थ प्रकृतियों के समान संबंध होने पर संधियों का उद्भव होता है। संधियां भी पांच होती हैं, मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, औमर संधि तथा उपसंहार। श्लोक। अर्थ प्रकृतयः पंच पंचावस्था समन्विता यथा संख्येन जायन्ते मुखाद्या पंच संधयः मुख प्रतिमुखे गर्भ साम वर्षोप संघृति। हेडिंग बिंदु। जहाँ किसी दूसरी कथा से विच्छिन्न हो जाने पर इतिवृत्त को जोड़ने एवं आगे बढ़ाने में जो कारण होता है वह बिंदु कहलाता है। यह अक्षेद कारण बिंदु वृत्तु में आगे जाकर ठीक वैसे ही प्रसारित होता है जैसे तेल की बूंद पानी में फैल जाती है, इसलिए इसे बिंदु कहते हैं। अर्थात अवांतरार्थ विच्छेदे बिंदुरच्छेद कारणम। हेडिंग बीज। नाटक के आरंभ में अल्प रूप से संकेतित वह तत्व जो नाटक के फल के कारण है और इतिवृत्त में अनेक रूप से पल्लवित होता है उसे बीज कहते हैं। अल्प रूप में निर्दिष्ट हेतु बीज वृत्त और फल का साधक है और वृक्ष के बीज के समान पल्लवित होकर अनेक शाखी वृक्ष की तरह वृक्ष के रूप में बढ़ता है। अर्थात श्लोक। अल्पमात्रम समुदिष्टम बहुधा यद्विसर्पति फलस्य प्रथमो हेतु बीज मित्यभिधीयते। हेडिंग नायक। नाटक का नायक त्यागी, यशस्वी, उच्च कुल में उत्पन्न, रूप यौवन, शोभा संपन्न, उत्साही, चतुर, प्रजाओं में अनुरागपूर्ण, तेजस्वी, वाक चतुर और शीलवान होता है। जैसे श्लोक। त्यागो कृति कुलीन शुशी को रूप यौवन उत्साही दक्षिण रक्तलोकस तेजो वदग्धशील वानेता। हेडिंग विदूषक। नाटक का विदूषक कुसुम, वसंत आदि नाम वाला होता है। वह अपने कार्य, शरीर, वेश, भाषा आदि के द्वारा हास्योत्पादक, कलह प्रेमी तथा स्वकर्मज्ञ मधुर भोजन आदि का इच्छुक होता है। श्लोक। कुसुम वसंताद्यभिद्य कर्म पूर्वेश भाषाद्य हास्यकर कलहरतिर्विदूषक स्यात स्वकर्मज्ञ। हेडिंग कंचुकी। कंचुकी उस कार्यकुशल व्यक्ति को कहते हैं जो जाति से ब्राह्मण, वृद्ध, स्वर्गुण संपन्न एवं कार्यकुशल हो। राजा के अंतःपुर में नियुक्त प्रबंधक कंचुक पहनता है, अतः उसे कंचुकी कहते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में कंचुकी की यह परिभाषा दी है। श्लोक। अंतःपुरचरो वृद्धो विप्रो गुण गणान्वितः सर्वकार्यार्थ कुशलः कंचुकीत्यभिधीयते। विश्वनाथ कविराज ने कहा है कि कंचुकी रनिवास का संरक्षक वह वृद्ध व्यक्ति होता है जो सत्यवादी, काम दोष रहित, व्यवहार कुशल तथा विवेकशील पुरुष हो। श्लोक। ये नित्यं सत्य संपन्ना काम दोष विवर्जिता ज्ञान विज्ञान संपन्ना कंचुकी आस्तु ते मता। हेडिंग कथावस्तु या इतिवृत्त। कथावस्तु या इतिवृत्त उसे कहते हैं जो रूपकों का भेदक हो। कथावस्तु दो प्रकार की होती है, नंबर एक आधिकारिक, नंबर दो प्रासंगिक। आधिकारिक कथावस्तु मुख्य होती है तथा प्रासंगिक गौण, कहा भी है। श्लोक। इत्यादि शेषित वस्तु विभेद जातम रामायण आदि च विभाव्य वृहत कथांच आसूत्रेतर्दुनम नेत्रसाणुगुणयाम चित्राम कथामुचित चारु वचः प्रपंके। हेडिंग भरतवाक्यम। भरतवाक्य संस्कृत साहित्य में नाटकों के अंत में आने वाले इस पद्य के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें राष्ट्र की गौरवपूर्ण सर्वविध समृद्धि के निमित्त किसी नाटकीय पात्र के द्वारा सामाजिका की शुभाशंसा की जाती है। नाट्यशास्त्र के परिणेता भरत मुनि के प्रति सम्मान प्रदर्शनार्थ ही इस अंतिम पद्य को भरतवाक्य कहा जाता है, अथवा नाटक के किसी नट विशेष भारत की उक्ति होने कारण ही इसे भरतवाक्य कहते हैं।